मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 23 जनवरी 2019 है और आज के इस afias.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं आज थोड़े से एक नए इशू पर बात करने जा रहा हूं। इनफैक्ट वैसे तो बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है इस मामले पर या कह लीजिए इस विषय पर मैंने बहुत कम ही बात की है, और यदि मैं याद करने की कोशिश करूं तो शायद एक आध दो बार ही इस पर बात हुई होगी। लेकिन डेफिनेटली इसके बावजूद यहां जो मैं बात करने जा रहा हूं उसके संदर्भ बिल्कुल नए होंगे और बहुत जरूरी भी होंगे। कल मैंने आपसे जिस विषय पर बात की थी उसमें सतर्कता की बात कही गई थी, अलर्टनेस, यानी कि हमारे अंदर कोई चीज तभी समा पाती है जब हम उन चीजों को अलर्टनेस के साथ करते हैं, और तभी वह चीज, वह काम, वह विचार संपूर्ण भी बन पाता है। अदरवाइज वो आधा अधूरा रह पाता है, और मान करके चलिए कि अगर कोई चीज आधी अधूरी है तो वो नहीं के बराबर ही होती है, बल्कि कहीं ना कहीं उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ने का की आशंका रहती है। उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आज आपसे साहस पर बात करने जा रहा हूं, और इसे अगर आप शीर्षक देना चाहे तो आप दे सकते हैं सामर्थ और साहस। सामर्थ को यहां आप क्षमता कह सकते हैं, कैपेबिलिटी कह सकते हैं, कैपेसिटी कह सकते हैं। हम सब की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं, है ना, अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं, चाहे वो हमारी शारीरिक क्षमता हो, मानसिक क्षमता हो, किसी भी तरह की योग्यता हो, हम सब की अपनी अपनी होती हैं। लेकिन मित्रों, यहां जो सबसे बड़े विचार करने की बात है वो ये है कि अगर मेरे अंदर सामर्थ्य है तो क्या मुझे अपने उस सामर्थ्य के अनुपात में परिणाम मिल जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सामर्थ्य तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा है लेकिन जो मुझे उसके परिणाम मिल रहे हैं, जो रिजल्ट मिल रहे हैं, वो हार्डली उसका 5% है, इवन 0% भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों है? इस पर मैं आज कुछ आपसे बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही व्यावहारिक बातें मित्रों करने जा रहा हूं, और मैं एक दो उदाहरण के माध्यम से ही अगर अपनी यह बात कहूं तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, मेरे शुरू के 18 साल मेरे प्यारे गांव में बीते हैं जो चंद्रमेढ़ा कहलाता है। गांव में मैं रहता था, हमारी छोटी सी दुकान थी, पढ़ाई मेरी बहुत पहले से छूट चुकी थी, तो दुकान में बेचने के लिए जिन सामान की जरूरत होती थी वह लेने के लिए लगभग 2 सप्ताह या 3 सप्ताह में हम लोगों में से किसी को शहर जाना पड़ता था। जो शहर थे वो एक शहर था सूरजपुर, जो लगभग 12 से 15 किलोमीटर पड़ता था, और दूसरा था हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अंबिकापुर, जो लगभग 55 किलोमीटर पड़ता था। अगर आपको सूरजपुर जाना है तो आप केवल साइकिल के जरिए ही जा सकते थे क्योंकि कोई गाड़ी नहीं चलती थी, और यदि आपको अंबिकापुर जाना हो तो सबसे पहले हमें अपने गांव से 4 किलोमीटर साइकिल से जाना होता था। उस साइकिल को आप वहां कहीं खड़ी कर दीजिए, वहां से मुख्य सड़क मिलती थी और उस पर बस आती थी, एक बस आती थी सुबह लगभग 8:30-9 बजे, और वह बस अंबिकापुर पहुंचाती थी और वहां से 4 बजे वह बस वापस चलती थी। फिर आप उस गांव में उतर जाइए जिसका नाम था गोंदा, और वहां से फिर साइकिल पकड़ के आप अपने घर वापस आइए। मैं जानबूझ करके ये दोनों घटनाएं बता रहा हूं, ये दोनों स्थल बता रहा हूं, राइट। हम सामान लेने जाने वालों में 3 लोग हुआ करते थे। एक मेरे चाचा जो जनरली नहीं जाते थे, वो जाना पसंद नहीं करते थे। दूसरे थे मुझसे 1.5 साल बड़े चाचा, और तीसरा था मैं। जनरली सामान लेने जाने के लिए मेरा ही सबसे ज्यादा नंबर लगता था कि तुम जाओ और शहर से सामान लेकर आओ। और इनफैक्ट सच पूछिए तो मुझे शहर जाने में बहुत दिक्कत होती थी। मतलब अगर मेरा फिक्स हो गया कि परसों शहर जाना है सामान लेने के लिए, तो ये मान के चलिए कि आज से ही मुझे कुछ बेचैनी सी होने लगती थी, अनमनापन सा होने लगता था, लगता था कि गांव छूट जाएगा, अरे भैया सुबह जाओगे शाम को लौट आओगे। लेकिन दिमाग में एक चीज होती थी, छूट जाएगा, फिर दिमाग चलना शुरू होता था कि सुबह जल्दी उठना होगा, नहा धो के तैयार होकर के फिर साइकिल लेकर के आप 4 किलोमीटर चला करके जाइए, फिर उसे किसी के यहां खड़ा कीजिए, फिर सड़क पर खड़े होकर बस का इंतजार कीजिए, फिर बस में पता नहीं सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ज्यादातर तो मिलती ही नहीं थी। फिर खड़े खड़े आप 55 किलोमीटर का सफर कीजिए, फिर वहां उतरिए, फिर वहां से रिक्शा पकड़िए और फिर उस दुकान में जाइए, थोक की दुकान में वहां सामान खरीदिए, उन्हें बांधिए और फिर उन्हें रिक्शे पर ला दिए। रिक्शे पर लादने के बाद फिर आप बस स्टैंड लेकर के आइए, फिर आप किसी कुली को पकड़िए, फिर वो बस के ऊपर चढ़ाएगा और फिर मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें होती थी वो दिमाग में घर करने लगती थी, तैरने लगती थी। और फिर शाम को फिर अपने जगह पर उस गांव में पहुंचेंगे, आप उतरिए, फिर उस सामान को उतारिए, फिर उसे ला दिए और फिर अपने घर पहुंचिए, और तब तक आप बुरी तरह से थक चुके होंगे। और सबसे ज्यादा मोह ये होता था कि हम लोग गांव में बैडमिंटन खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, तो शाम को बैडमिंटन फुटबॉल आप उस दिन नहीं खेल पाएंगे। ये बहुत जबरदस्त मोह हुआ करता था, मतलब या तो बैडमिंटन को आप मिस करेंगे या फुटबॉल को मिस करेंगे। मित्रों, मैं जानबूझकर के ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि कैसे हम साहस के अभाव में अपने सामर्थ्य को खो देते हैं। अब आप देखिए कि गांव से शहर जाना, सामान खरीद करके लाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उतना सामर्थ्य मुझ में है कि मैं जाकर के ये काम कर सकता हूं, लेकिन मैं साहस नहीं जुटा पा रहा हूं। और साहस क्यों नहीं जुटा पा रहा हूं, बस ये छोटे 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 से काम। और किसी भी काम को जब आप बार बार करने लगते हैं तो आप उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, तो आपको अड़चन वाली भी नहीं लगती कि इससे बहुत ज्यादा अड़चन हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, हम कैसे करेंगे, ऐसा भी नहीं था। लेकिन दिमाग की संरचना हमारी होती ऐसी है कि जिस हम कंफर्टेबल जोन में रहने लगते हैं, कंफर्ट जोन में रहने लगते हैं, मतलब हम अपने चारों तरफ दीवारें बना लेते हैं, अदृश्य दीवारें बना लेते हैं, और उन दीवारों के बीच में हम रहने लगते हैं और फिर रहना पसंद भी करने लगते हैं। तो जब भी उन अदृश्य दीवारों के बाहर जब जाने की स्थिति आती है, अनावश्यक रूप से मन बेचैन हो उठता है, और वही मेरे साथ होता था, आप लोगों में से भी ज्यादा लोगों के साथ शायद होता होगा, जिसको कहते हैं कंफर्ट जोन। तो अब सबसे बड़ी बात है कि आप इस कंफर्ट जोन को तोड़ने का साहस कितना कर पाते हैं। ठीक है मित्रों, तो मैं चलिए अब अपनी छोटी सी कहानी पर आता हूं। तो शहर में बार बार जाने लगा, बार बार आने लगा, सबसे ज्यादा मेरा ही आना जाना होता था, तो बट नेचुरल है कि शहर में थोड़ा सा परिचय भी हो गया। इसके बाद सन 75 के आसपास एक निर्णय लेना हुआ, और निर्णय यह हुआ कि हम लोग गांव में तीन व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति के लायक यहां व्यापार नहीं है, इनमें से किसी एक व्यक्ति को शहर चले जाना चाहिए और वहां कुछ बिजनेस शुरू करना चाहिए, राइट? अब सवाल यह हुआ कि इन तीन व्यक्तियों में से कौन शहर जाने के लिए सबसे सुटेबल हो सकता है। तो मित्रों, आप बताइए कि जो घटना मैंने पीछे से आपको बताई है उसके आधार पर किसका चयन किया जाना था। स्वाभाविक रूप से मेरा चयन किया गया कि नहीं, ये शहर आता जाता है, इसकी थोड़ी सी जान पहचान भी, ये शहर को भी जानता है, तो ज्यादा अच्छा होगा कि यही शहर में दुकान कर ले। जब ये निर्णय हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने आसमान से गिरा करके और गहरी खाई में डाल दिया हो कि अरे बाप रे, अब पूरी जिंदगी शहर में बिताना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जो भी निर्णय लिया गया, क्योंकि स्थितियां दिखाई दे रही थी, मैंने शहर में अपनी दुकान खोली रेडीमेड की, वहां महामाया चौक है अंबिकापुर में, वहां एक बहुत छोटी सी दुकान, जैसे कि समझ लीजिए कि पान की कोई बड़ी सी दुकान हो, उसकी शुरुआत की। और ये शहर जाना मेरी जिंदगी के लिए आप कह लीजिए वरदान सिद्ध हो गया, वरदान सिद्ध हो गया, क्योंकि जिंदगी में जो बदलाव की शुरुआत हुई उस शहर जाने से ही हुई। तो मित्रों, अगर मजबूरी में ही सही मैं अपने अंदर वो साहस नहीं जुटा पाता कि नहीं मुझे आना जाना है, तो मुझे यह अवसर कभी भी नहीं मिलता। मैं आपको एक छोटी सी और घटना बताता हूं, ये जीवन की घटनाएं हैं, इसीलिए मैं घटनाओं के माध्यम से ही आपको कुछ मैसेज देना चाहूंगा। मित्रों, अंबिकापुर कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जो डॉक्टर माहुले की बेटी थी, उनको हम लोग मैडम माहुले के नाम से जानते थे। और सबसे बड़ी बात उनकी यह थी कि कभी वो सेकंड पोजीशन में ही नहीं रहे, सेकंड डिवीजन की बात छोड़ी, यूनिवर्सिटी कभी सेकंड पोजीशन में नहीं रही। हमें लोग के समय में 11th हुआ करता था बोर्ड, 11th में पता लगा स्टेट टॉपर, और उस समय स्टेट टॉपर का था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला करके स्टेट टॉपर। बीएससी उन्होंने किया, रविशंकर यूनिवर्सिटी टॉपर। एमएससी उन्होंने बॉटनी से किया, टॉपर, जैसे कि टॉपर का उनका लिख दिया गया, उन रजिस्ट्री हो गई है टॉपर के नाम से। ठीक है, जब उन्होंने टॉप कर लिया तो इसके बाद एग्जाम वगैरह हुए तो वो हाई स्कूल में टीचर हो गई। कुछ समय के बाद कॉलेज में पोस्ट निकली लेक्चररशिप के लिए, और इत्तफाकन कुछ ऐसा था कि वो जो लेक्चररशिप की जो पोस्ट थी वो एडहॉक थी। एडहॉक का मतलब अस्थाई थी, कुछ महीनों के लिए थी। उनसे जब कहा गया कि आप कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए, वहां से त्याग पत्र दे दीजिए और यहां आके ज्वाइन कर लीजिए, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वो जो हायर सेकेंडरी की जो नौकरी थी वो परमानेंट थी, लेकिन ये एडहॉक थी, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। दूसरों ने अपना ज्वाइन किया, शुरू में मेरी भी ज्वाइनिंग उसी के तहत हुई थी, और कुछ समय के बाद वो जितनी भी एडहॉक की सर्विसेज थी वो लगभग एक प्रक्रिया के तहत परमानेंट कर दी गई। तो यहां चूंकि वो उस नौकरी को छोड़ने का साहस नहीं जुटा सकी, तो आप देखिए कि जो शुरू से टॉपर स्टूडेंट रही हैं वो हाई स्कूल में टीचिंग कर रही हैं, और जो सामान्य स्टूडेंट रहे हैं वो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। सवाल यहां इंडिविजुअल का नहीं है, मैं तो इसे इस रूप में भी देखता हूं कि वो टॉपर रही हैं, और अगर वो कॉलेज में पढ़ाती तो सच में वो कितनी अच्छी लेक्चरर सिद्ध होती, कितने लड़कों का उससे, कितने स्टूडेंट्स का उससे भला होता। तो उन्होंने अपना भी नुकसान किया केवल साहस के अभाव में, और सच पूछे तो समाज का भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ ही। तो दोस्तों, ये जो साहस का जो तत्व है, इसके महत्व को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक हमारे सामर्थ्य के साथ हमारे साहस का मेल नहीं बैठेगा, दोनों का हम संगम नहीं कराएंगे, हमारा जो सामर्थ्य है वो कोई खास कुछ कर पाएगा नहीं। तो मित्रों, आज के इस विषय पर बस इतना ही। मैं चाहूंगा कि इस पर आप सब प्रश्न करें, ताकि मैं इस टॉपिक को और आगे बढ़ा सकूं। जब आप लोग प्रश्न करेंगे तभी मेरे दिमाग में कुछ उत्तर, आप कह लीजिए कि पैदा होंगे, और मैं आप तक पहुंचा सकूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।